इकहत्तर ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी किताब पर बात करने वाले हैं।
जी हाँ, किताब का नाम है अ लिटिल डेविल इन अमेरिका, इन प्रेज ऑफ ब्लैक परफॉर्मेंस। लेखक है हनीफ अब्दुल रकीब। और ये किताब मतलब अमेरिका में जो अश्वेत प्रदर्शन है, ब्लैक परफॉर्मेंस, उसकी दुनिया में हमें बहुत गहराई से ले जाती है।
और देखिए, ये सिर्फ स्टेज पर नाच गाने की बात नहीं है।
नहीं,
ये किताब असल में समझाती है कि कैसे ये प्रदर्शन, चाहे वो संगीत हो, खेल हो, कॉमेडी या फिर रोजमर्रा की छोटी मोटी रस्में भी, अश्वेत समुदाय के लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है।
बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। उनके वजूद से जुड़ा है, उनकी खुशी, उनका दुख, उनकी पहचान, सब कुछ इसमें शामिल है।
हाँ, और ये चीज आज भी उतनी प्रासंगिक है ना। हम देखते हैं कि कैसे कला, कैसे परफॉर्मेंस उन समुदायों के लिए जो हाशिए पर हैं, अपनी आवाज उठाने का, अपनी पहचान बनाने का और मुश्किल हालात में भी एक दूसरे से जुड़ने का जरिया बनती है।
सही बात है। ये किताब हमें दिखाती है कि कैसे संस्कृति मतलब दबावों और इतिहास के बीच अपनी जगह बनाती है और पनपती भी है।
तो थोड़ा लेखक के बारे में बात करें। हनीफ अब्दुल रकीब, वो सिर्फ एक लेखक के आलोचक तो नहीं है?
हाँ, सही कहा। हनीफ अब्दुल रकीब कोलंबस ओहायो से हैं। कवि हैं, निबंधकार हैं और कल्चरल क्रिटिक भी। उनकी पिछली किताबें भी काफी मशहूर रहीं, जैसे गो अहेड इन द रेन।
और दे कांट किल अस अंटिल दे किल अस।
हाँ, पर उनकी जो खास बात है वो उनके लिखने के तरीके में है ना?
बिल्कुल, वो सिर्फ विश्लेषण नहीं करते, वो अपनी यादें, अपनी भावनाएं, एक फैन का जुनून होता है, वो सब मिला देते हैं। तो पढ़ते हुए लगता है कि वो बाहर से नहीं देख रहे हैं, बल्कि उस कल्चर के अंदर से उसे महसूस करके लिख रहे हैं। हाँ, और उनकी भाषा भी, उसमें एक पोएट्री है, एक काव्यात्मकता है, सीधे दिल तक पहुंचती है।
और शायद इसीलिए वो संगीत, पॉप कल्चर, खेल, नस्ल, इन सब मुद्दों पर इतनी गहराई से और इतनी संवेदनशीलता से लिख पाते हैं। वो सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं बताते, बल्कि उसके पीछे के जज्बात, हाव भाव, आवाज की बारीकियां, इन सब को पकड़ते हैं।
एक तरह से अश्वेत प्रदर्शन की आत्मा को समझने की कोशिश करते हैं।
हाँ, बिल्कुल।
तो चलिए अब किताब पर आते हैं, अ लिटिल डेविल इन अमेरिका। ये अश्वेत प्रदर्शन के इतिहास और उसके महत्व को कैसे देखती है, क्या कहती है किताब?
देखिए, पहली बात तो ये कि ये कोई सीधी साधी लीनियर कहानी नहीं है, मतलब शुरू से आखिर तक। ये तो एक जैसे कलाइडोस्कोप होता है ना,
वैसा है।
अलग अलग वक्त, लोग, जगहों, प्रदर्शन सब मिलकर एक बड़ी थोड़ी जटिल सी तस्वीर बनाते हैं। इसमें मशहूर कलाकार तो है ही, पर साथ ही रोजमर्रा की जिंदगी के जो प्रदर्शन है,
जैसे
जैसे दोस्तों के साथ ताश खेलना या किसी फंक्शन में जाना, उनको भी उतनी ही अहमियत दी गई है।
अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि किताब ये मानती है कि प्रदर्शन सिर्फ स्टेज पर नहीं होता।
बिल्कुल नहीं। और यही किताब का एक मुख्य विचार है कि अमेरिका का जो माहौल है, जो अक्सर अश्वेत लोगों के लिए मतलब थोड़ा मुश्किल रहा है, उस माहौल में प्रदर्शन करना सिर्फ मनोरंजन नहीं है,
तो फिर क्या है?
वो जिंदा रहने का एक तरीका है, आजादी महसूस करने का, अपनी इंसानियत का जश्न मनाने का, दुख जाहिर करने का, और सबसे जरूरी, एक समुदाय बनाने का जरिया है, एक भाषा है आप कह सकती हैं।
और इसमें वो वाइट गेज या श्वेत नजर वाली चुनौती का भी जिक्र है, वो जो लगातार देखे जाने का दबाव होता है।
हाँ, ये बहुत अहम बात है किताब में, श्वेत नजर, मतलब गोरे समाज द्वारा लगातार देखे जाने, परखे जाने और अक्सर गलत समझे जाने का जो दबाव होता है, किताब बताती है कि कैसे इस नजर ने अश्वेत प्रदर्शन को कहीं ना कहीं शेक दिया है।
मतलब कलाकारों को हमेशा एक संतुलन बनाना पड़ता होगा अपनी असलियत और दर्शकों की उम्मीदों के बीच।
बिल्कुल। और किताब का एक और बहुत दिलचस्प पहलू है, वो ये कि ये हर अश्वेत प्रदर्शन को एक छोटा चमत्कार कहती है।
छोटा चमत्कार, इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब ये कि इतने ऐतिहासिक दबाव, नस्लवाद, मुश्किल हालात, इन सब के बावजूद जब कोई अश्वेत व्यक्ति अपनी कला, अपनी खुशी, अपनी पहचान दिखाता है, तो वो अपने आप में एक जीत है, एक मिरेकल है, जीवन का दावा है। लेकिन किताब ये भी दिखाती है कि यही प्रदर्शन शोषण का जरिया भी बन सकता है और सशक्तिकरण का भी, आघात भी दे सकता है और उत्कृष्टता भी। तो चीजें थोड़ी पेचीदा हैं।
हाँ, ये तो वाकई बहुत गहरी बात है। अच्छा, किताब की बनावट भी थोड़ी अलग है, चैप्टर्स की जगह मूवमेंट्स है। है ना?
हाँ, जिसे संगीत में या नाटक में होते ना अलग अलग हिस्से, वैसे ही इसमें 5 मूवमेंट्स हैं। ये बनावट भी एक तरह से प्रदर्शन के आइडिया को ही दिखाती है। तो चलें पहले मूवमेंट में।
हाँ बिल्कुल, मूवमेंट आए परफॉर्मिंग मिरेकल्स, चमत्कार करना, तो यहीं पर वो छोटे चमत्कार वाली बात आती है।
एकदम अब्दुल रकीब यहाँ अपने बचपन के एक अश्वेत जादूगर का जिक्र करते हैं, ये दिखाने के लिए कि कैसे प्रदर्शन खासकर मुश्किल हालात में उम्मीद जगा सकता है, हैरत पैदा कर सकता है। और इसी मोमेंट में वो बात करते हैं मशहूर डांसर और सिंगर जोसेफीन बेकर की।
ओ जोसेफीन बेकर, वो पेरिस ट्री गई थी ना अमेरिका के नस्लवाद से बचने के लिए।
हाँ, और वहां उन्होंने अपने प्रदर्शन से खुद को एक नए रूप में गढ़ा, लेकिन जैसा आपने पहले कहा था, ये आसान नहीं था।
हाँ वहां भी तो श्वेत दर्शकों की अपनी उम्मीदें थीं, अपनी कल्पनाएं थीं उनके बारे में।
बिल्कुल, और अब्दुल रकीब यही दिखाते हैं कि कैसे बेकर ने दर्शकों की उन विदेशी या अनोखी छवियों को अपनाया भी और उन्हें चुनौती भी दी। ये दिखाता है कि प्रदर्शन पहचान बनाने का कितना शक्तिशाली पर कितना जटिल जरिया हो सकता है।
और इसी में वो केक वॉक डांस का भी जिक्र है।
हाँ, केक वॉक, जिसे गुलाम बनाए गए अफ्रीकी अमेरिकियों ने अपने मालिकों का मजाक उड़ाने के लिए ईजाद किया था, तो यहाँ प्रदर्शन एक तरह का प्रतिरोध बन जाता है।
दिलचस्प। अच्छा अब दूसरा मूवमेंट, मूवमेंट 2, ऑन मैटर्स ऑफ द फ्लैश, शरीर और रक्त के मामलों पर। ये शरीर पर केंद्रित है।
हाँ, ये मूवमेंट अश्वेत शरीर को देखता है प्रदर्शन के स्थल के रूप में, चोट खाने की जगह के रूप में और ताकत की जगह के रूप में भी। और यहाँ मुख्य उदाहरण है बॉक्सर माइक टाइसन का।
माइक टाइसन, मीडिया ने तो उनकी एक राक्षसी छवि बना दी थी।
सही कहा, पर अब्दुल रकीब उस छवि से आगे जाते हैं। वो उनके गुस्से, उनके दर्द को समझने की कोशिश करते हैं जो उनके रिंग के प्रदर्शन में दिखता था।
तो मतलब वो टाइसन की आक्रामकता को सिर्फ हिंसा नहीं मानते, वो उसे किसी और चीज की अभिव्यक्ति की तरह देखते हैं।
कुछ ऐसा ही, एक जटिल लगभग कलात्मक प्रतिक्रिया सामाजिक दबावों और निजी तकलीफों के लिए। ये मूवमेंट ये भी दिखाता है कि कैसे अश्वेत एथलीटों की शारीरिक क्षमता का तो जश्न मनता है पर अक्सर उनकी पूरी इंसानियत को अनदेखा कर दिया जाता है।
शरीर प्रदर्शन का जरिया भी है और जांच का विषय भी। अगला मूवमेंट, मूवमेंट 3, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स और अ लिटिल डेविल इन अमेरिका। ये सुनने में किताब का दिल लगता है।
हाँ, ये भावनात्मक और विषय के हिसाब से बहुत अहम है। ये मिन्स्ट्रेलसी पर बात करता है, वो जो गोरे कलाकार चेहरा काला करके अश्वेतों का मजाक उड़ाते थे और उसके असर पर। और यहीं पर मुखौटा यानी मास्क पहनने का विचार आता है।
इसमें किस कलाकार पर ज्यादा ध्यान है?
मुख्य रूप से बर्ट विलियम्स पर, 20वीं सदी की शुरुआत के मतलब बहुत ही प्रतिभाशाली अश्वेत कॉमेडियन और गायक थे वो, अमेरिका के पहले अश्वेत सुपरस्टार्स में से एक। लेकिन
लेकिन उफ, जरा सोचिए, अपनी ही पहचान का मजाक उड़ाने पर मजबूर होना, इसकी जो मनोवैज्ञानिक कीमत होगी
बहुत भारी। अब्दुल रकीब इसी दर्द को सामने लाते हैं और फिर वो इस मुखौटे की विरासत को आज के कलाकारों से जोड़ते हैं, जैसे कॉमेडियन डेव चैपल।
डेव चैपल जिन्होंने अपना मशहूर शो छोड़ दिया था।
हाँ, और उसके पीछे एक वजह ये डर भी था कि कहीं श्वेत दर्शक उनके नस्लीय मजाक पर गलत कारणों से तो नहीं हंस रहे, मतलब अश्वेत लोगों पर हंसना, न कि नस्लवाद की आलोचना के साथ हंसना। ये बहुत बड़ा सवाल है कि कलाकार किसके लिए परफॉर्म कर रहा है और उसकी कला को समझा कैसे जा रहा है।
ये वही तनाव है श्वेत नजर और अपनी असलियत के बीच का। बिल्कुल, अब आते हैं मूवमेंट 4, आई एम श्योर आई विल सी यू अगेन, मुझे यकीन है मैं तुम्हें फिर देखूंगा। ये शोक और याद करने से जुड़ा है।
हाँ, ये मूवमेंट देखता है कि कैसे प्रदर्शन दुख को प्रोसेस करने, मौत को समझने और जो चले गए हैं उन्हें याद करने का एक जरूरी जरिया है। अब्दुल रकीब अश्वेत अंतिम संस्कार को ही एक शक्तिशाली प्रदर्शन मानते हैं।
अंतिम संस्कार को प्रदर्शन कैसे?
वहां दुख और जीवन का जश्न दोनों एक साथ होते हैं। जो स्तवन पढ़े जाते हैं, जो गीत गाए जाते हैं, लोगों का इकट्ठा होकर दुख बांटना, ये सब मृतकों को सम्मान देने और जिंदा लोगों के बीच के बंधन को मजबूत करने का एक तरीका है। एक तरह का प्रदर्शन ही है ये।
और संगीत आइकॉनों की विरासत, उसका भी जिक्र है उसमें।
हाँ, जैसे विटनी ह्यूस्टन, कैसे उनकी आवाज एक पूरी पीढ़ी की जिंदगी का साउंडट्रैक बन गई, और जब उनकी मृत्यु हुई तो लोगों का जो दुख था वो भी एक तरह का सामूहिक प्रदर्शन था। उनके संगीत उनकी याद के लिए प्यार का प्रदर्शन। और इसी मूवमेंट में मेरे क्लेटन का जिक्र है, रोलिंग स्टोन्स का गाना है गिमी शेल्टर, उसमें उनकी जो आवाज है वो एकदम कच्चा भावनात्मक प्रदर्शन है। वो उन तमाम अश्वेत महिला कलाकारों का प्रतीक है जिनकी प्रतिभा अक्सर पर्दे के पीछे रह जाती है।
सही बात है। और अब आखिरी मोमेंट, मोमेंट 5, इन द हायर ब्राइटर रेडिएंट वर्ल्ड, उच्चतर उज्जवल दीप्तिमान दुनिया में, ये खुशी और जश्न के बारे में लगता है।
एकदम, ये उन जगहों और पलों पर फोकस करता है जहां अश्वेत लोगों ने श्वेत नजर के सीधे दखल से थोड़ा बचकर अपनी खुशी, अपनी क्रिएटिविटी, अपने समुदाय का जश्न मनाया है। और यहां सबसे बड़ा उदाहरण है टीवी शो सोल ट्रेन।
सोल ट्रेन, अरे हाँ, वो डांस लाइन।
वही, अब्दुल रकीब सोल ट्रेन की डांस लाइन को सिर्फ नाचने की जगह नहीं कहते, वो उसे कहते हैं भविष्य का रनवे।
भविष्य का रनवे, वाह।
हाँ, एक ऐसी जगह जहाँ अश्वेत युवा अपनी स्टाइल, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी बेफिक्र खुशी खुलकर दिखा सकते थे। वो अश्वेत सेल्फ एक्सप्रेशन और कम्युनिटी जॉय का एक मतलब पवित्र स्थान था।
और ऐसा ही एक और उदाहरण है किताब में, ताश का खेल, स्पेड्स।
हाँ, स्पेड्स वो सिर्फ एक खेल नहीं है, वो रणनीति है, वो मजाक मस्ती, नोक झोंक है, वो साझेदारी है और वो पीढ़ियों से चली आ रही कल्चरल मेमोरी है। सब कुछ का प्रदर्शन है वो खेल। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जिनमें समुदाय अपनी खुशी और अपनापन ढूंढता है। और किताब इसी खुशी के नोट पर खत्म होती है, ये दिखाते हुए कि ये जश्न वाले प्रदर्शन भी असल में जिंदा रहने और इंसानियत को बचाए रखने का एक तरीका है।
इस पूरी बातचीत से मतलब कई जरूरी बातें निकल कर आ रही हैं, कई थीम्स।
हाँ, पहली तो यही जो मुझे बहुत चौंकाने वाली लगी कि खुशी भी एक तरह का प्रतिरोध हो सकती है। ऐसे समाज में जहाँ अश्वेत अनुभव को अक्सर दुख से जोड़ा जाता है, वहाँ खुलकर खुशी मनाना, सोल ट्रेन में नाचना, स्पेड्स खेलना, ये अपने आप में एक पॉलिटिकल एक्ट है।
ये सिर्फ भागना नहीं है बल्कि खुद को बचाए रखना है। और दूसरी अहम बात, वो श्वेत नजर का बोझ, वो लगातार बना रहता है।
बिल्कुल, बर्ट विलियम्स से डेव चपेल तक हमने देखा कि कैसे श्वेत दर्शकों की नजर का असर पड़ता है। ये तय करता है कि क्या सेफ है, क्या ऑथेंटिक, क्या खतरनाक।
तीसरी थीम हुई प्रदर्शन का शोक और याद की भाषा बनना, जैसे अश्वेत अंतिम संस्कार या विटनी ह्यूस्टन के फैंस का दुख। प्रदर्शन हमें दुख से उबरने में मदद करता है।
हाँ, और दुख के साथ साथ जीवन का जश्न भी मनाता है। चौथी बात, अश्वेत शरीर प्रदर्शन दर्द और ताकत का केंद्र। माइक टायसन का उदाहरण याद आता है, कैसे शरीर की तारीफ भी होती है और उसी समाज में उससे डर भी लगता है।
प्रदर्शन उस शरीर पर अपना कंट्रोल वापस पाने का एक तरीका बन जाता है। और पांचवी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो है रोजमर्रा की रस्मों की अहमियत।
हाँ, प्रदर्शन सिर्फ बड़े मंच पर नहीं होता, परिवार के साथ ताश खेलना, चर्च जाना, दोस्तों से मिलना, ये सब छोटे छोटे मगर बहुत जरूरी प्रदर्शन हैं जो हमारी पहचान को मजबूत करते हैं, हमें जोड़ते हैं।
किताब में यकीनन कई ऐसी लाइनें होंगी जो इन बातों को बहुत खूबसूरती से कहती हैं, कुछ याद हैं?
हाँ, एक तो वो जो बार बार आती है, अमेरिका में एक अश्वेत व्यक्ति का प्रदर्शन करना एक छोटा चमत्कार है, ये हमेशा याद दिलाता है कि ये कितनी बड़ी बात है।
और सोल ट्रेन वाली बात, सोल ट्रेन लाइन भविष्य का रनवे थी, ये कितनी उम्मीद भरी बात है ना, एक आजाद जगह की तस्वीर।
और बर्ट विलियम्स के बारे में वो लाइन, मुखौटा पहनना अपनी आत्मा का एक हिस्सा जोखिम में डालना है, ये उस कीमत की याद दिलाती है जो कभी कभी चुकानी पड़ती है।
और अश्वेत अंतिम संस्कार पर वो टिप्पणी, एक अश्वेत अंतिम संस्कार में शोक एक जोरदार सांप्रदायिक प्रदर्शन है, हम रोते हैं और हम हंसते हैं, ये हमारे शोक मनाने के तरीकों पर भी सवाल उठाता है।
बिल्कुल, और आखिर में वो थोड़ी तीखी टिप्पणी, दर्शक अश्वेत प्रदर्शन से प्रभावित होना चाहता है जबकि अश्वेत मानवता से अप्रभावित रहता है, ये सोचने पर मजबूर करती है।
हाँ, कि क्या हम कला को तो सराहते हैं पर कलाकार और उसके समाज की सच्चाई से दूरी बनाए रखते हैं, तो इन सबका हमारे लिए क्या मतलब है, हम अपनी जिंदगी में इसे कैसे देख सकते हैं?
सही सवाल है। एक चीज तो ये हो सकती है कि हम मीडिया को थोड़ा और ध्यान से देखें, सुने, जब कोई गाना सुने, फिल्म देखें, खेल देखें, तो सिर्फ सतह पर ना रुकें, सोचें कि इसके पीछे क्या कहानी है, क्या संघर्ष है, कौन सी खुशी है, ये किसके लिए है।
और इससे शायद हमारी सहानुभूति और समझ बढ़े, वो श्वेत नजर या मुखौटा पहनने का दबाव, अगर हम उसे थोड़ा समझ पाएं तो शायद हम उन लोगों के अनुभवों को बेहतर महसूस कर सकें जो हाशिए पर हैं।
तीसरा, हम अपनी रोजमर्रा की रस्मों को ज्यादा महत्व दें। परिवार के साथ खाना, दोस्तों से मिलना, त्योहार मनाना, ये सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये हमारे रिश्ते, हमारी पहचान के प्रदर्शन है, इन्हें सहेजें।
और खुशी, खुशी को एक जरूरी चीज समझें, सिर्फ लग्जरी नहीं। ये किताब दिखाती है कि खुशी मनाना भी टिके रहने का एक तरीका है। हमें जानबूझकर खुशी के लिए जगह बनानी चाहिए।
और आखिर में ये हमें पहचान की जटिलता पर सोचने को कहती है। हम सब अलग अलग हालात में अलग अलग लोगों के सामने अपनी पहचान के अलग अलग हिस्से दिखाते हैं, एक तरह से परफॉर्म करते हैं। इस पर सोचने से शायद हम खुद को और दूसरों को थोड़ा बेहतर समझें।
मेरे लिए तो इस किताब से सबसे बड़ी सीख यही रही कि प्रदर्शन कितना बड़ा शब्द है। ये सिर्फ कला नहीं, ये जिंदगी जीने का तरीका है, दुख जताने का तरीका है, खुशी का इजहार है। इसने मेरे लिए प्रदर्शन के मायने बदल दिए।
और मुझे सबसे ज्यादा इस बात ने छुआ कि कैसे रोजमर्रा की चीजें, वो डांस लाइन, वो ताश का खेल, इतने गहरे मतलब लिए हुए हैं। और हाँ, बर्ट विलियम्स जैसे कलाकारों की कहानी, वो याद दिलाती है कि अपनी कला, अपनी पहचान के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ी है। ये किताब इतिहास को सिर्फ फैक्ट्स की तरह नहीं बल्कि इंसानी जज्बात के जरिए दिखाती है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए कत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।